आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के निर्जरा अधिकार के हमारी पहली 193 नंबर की गाथा चल रही है और उस पर जो स्वामी जी के प्रवचन है उस प्रवचन रत्नाकर भाग 7 के पृष्ठ क्रमांक 17 पर हम आए हैं 17। ये दूसरा पैराग्राफ जहां से नया टॉपिक चल रहा है उसको हम देखते हैं। कहे छे ज्ञानी ने जे जड़कर्म उदय में आवे छे ते नवो बंध करिया विना खरी जाए छे। क्या कहा के ज्ञानी है ना, तो उसने क्या किया है, अपने आत्मा का अनुभव किया है और उस वक्त क्या हो रहा है कि उसका पूरा पूरा ध्यान अपने स्व के तरफ ही है। जैसा ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है कि किसी स्त्री को बालक आए जन्म हो जाए तो कोई भी काम करती हो जरा वहां प्या चालू हो गया तो वो दौड़ के वहां जाती है, वो यानी जहां यहां वो कुछ भी कार्य करे फिर भी उसका अटेंशन उसका लक्ष्य पूरा पूरा अपने बालक पर रहता है। वैसा जिस जीव ने आत्मा का अनुभव किया है वो अन्य किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो तो वो आत्मा को रोना नहीं पड़ता है, फिर भी उस जीव का हमेशा अटेंशन कहो या अपना क्या कहते हैं उपयोग कहो अपने स्व के तरफ ही लगता है। उसको जब क्रोध आता है तब वह जानता है कि यह क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ। इस तरह वह अपने स्वभाव को हमेशा याद करता है, स्वभाव के तरफ अपना हमेशा उपयोग रखता है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञानी ने जे जड़कर्म उदय में आवे छे, यानी ज्ञानी भले हुआ हो लेकिन उसने जो पूर्व में जो कोई कर्म बांधे होंगे उन कर्मों की स्थिति पूरी होते ही उनका उदय तो आएगा ही। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी ने जे जड़कर्म उदय में आवे छे ते नवो बंध करिया विना खरी जाए छे, क्योंकि जड़ कर्म का उदय हुआ और यह जीव उस कर्म में लग गया कर्म में जुड़ गया यानी कर्म के तरफ उसका अटेंशन गया तो उसको राग द्वेष हुए बिना रहेंगे नहीं और राग द्वेष होते ही नए कर्मों का बंध होगा। अब वो जो कोई कर्म आते हैं उदय में उनके तरफ ये ध्यान ही नहीं देवे उसमें अटैच नहीं हुए अट्रैक्ट नहीं हुए तो वो कर्म आए और उदय में आकर खिर गए।
देखो ये बात 190-191 वगैरह गाथाओं में बात आ गई थी ना कि पुराने कर्मों का उदय जो है जड़ कर्मों का उसको वहां प्रत्यय कहा था, द्रव्य प्रत्यय कहा था, तो वो पुराने कर्मों के उदय जो है वो नया कर्म का बंद करता है। परंतु वहां एक आवश्यक बात है, कौन सी, राग द्वेष मोह करे जीव तो, यानी पुराने कर्मों के उदय में यहाँ जीव राग द्वेष मोह करता है, यहाँ मिथ्यात्व सहित वाला राग द्वेष मुख्यतः लेना उसको, तो फिर नया बंध वहाँ होता है। परंतु पुराना कर्म का उदय आवे और यहाँ जो मिथ्यात्व और राग द्वेष नहीं करे तो वो उदय में आकर गिर जाएगा, उससे और नया बंध नहीं होगा। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी के ये कर्मों को ज्ञान होगा ना, कुछ अक्कल होगी कि अरे ये ज्ञानी है, इसका नया नहीं बंध करना है। क्यों उसको समझता होगा ना कि अज्ञानी, अरे इसको बंद करो, और ये ज्ञानी इसका बंद नहीं करो। तो ये सहज ही जहाँ राग द्वेष मोह है उसके सद्भाव में, वहाँ नया बंद होता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसके लिए वो जड़ को ज्ञान होने की जरूरत नहीं है।
फिर भी यहाँ पर एक नियम क्या बताया है, बहुत बढ़िया नियम है वो। क्या कह रहे देखो, ज्ञानी ने जे जड़ कर्म उदय में आवे छे ते नवो बंद करिया विना खरी जाए छे। केम केम खरी जाए छे? कारण के उदय में आव्या पछी कर्मनी सत्ता रही शकेज नहीं, क्योंकि जो कर्म उदय में आते हैं वे अकर्म रूप हो जाते हैं। जो पहले कारमान वर्गना रूप थी उसका जो कर्म रूप परिणति हुई, वो कर्म जब उदय में आवेगा तो वो उदय में आते ही वह कर्म कर्म रूप से न रहकर अकर्म रूप हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, उदय में आया पछी कर्मनी सत्ता रही शकेज नहीं, आ रीते तेने नवो बंद थतो नथी, अने उदय में आवेलू कर्म निर्जरी गयू तेथी तेने केवल निर्जराज थई छे। धर्मीनी दृष्टिनू जोर शुद्ध न्यायक ऊपर छे। बहुत अच्छा शब्द वापरा है। देखो क्या कहते हैं, धर्मीनी दृष्टिनू जोर, हम तो कहेंगे उनका लक्ष्य उधर है, वो नहीं, दृष्टिनू जोर कोना ऊपर छे, शुद्ध न्यायक ऊपर छे। अनाकुल शांति नो रसकंद चिदानंद चैतन्य मूर्ति परमानंदमय प्रभु हूँ परमात्म द्रव्य छू, एवी दृष्टिना जोर ने लीधे तेने राग आवे छे, छता तेमा केवल निर्जराज थई जाय छे। जारे अज्ञानी पंच महाव्रत पाड़े तो पन तेने मिथ्यात्मनु जोर होवा थी अने धर्मी ने दृष्टिनो जोर होवा थी, इसमें फर्क समझ में कहते हैं मिथ्यात्मनु जोर होवा थी आ महाव्रतना परिणाम हूँ करूँ छू अने तेथी मने लाभ थाय छे, एवी मिथ्या मान्यतानु जोर होवा थी अनंतो संसार फळतो जाय छे। अभी वो बहन आए थे ना, उन्होंने भी ऐसी बात पूछी जो यहाँ चलो है, लग यहाँ की लगती है। मैं बोलना नहीं चाहता था, वरना अभी क्या करे, नहीं तो पेट में दुखे ना भाई, जो बात पेट से बाहर है अंदर ही अंदर रखे तो। लेकिन हमारे फायदे की बात है। उनका क्या कहना है कि ये दिगंबर लोग जो हैं वो क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, और श्वेतांबर लोग कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय हो ही नहीं सकती। तो हमने पूछा क्यों नहीं हो सकती, तो अगर होगी तो जब होना जो होगा जब होगा ऐसा मानकर समझकर हम पुरुषार्थ करना ही छोड़ देंगे। हाँ, जो होना होगा, ऐसा श्वेतांबर लोगों का कहना है। और आप लोगों का कहना ऐसा है कि सारी बातें क्रमबद्ध पर्याय होती है। आप भी कहते हैं ऐसा सर्वज्ञ ने कहा, वे भी कहते हैं वैसा सर्वज्ञ ने कहा, तो हमको किसका सच्चा मानना? तो आपके पास कोई रेफरेंस किताबें हैं? सो दैट आई वांट टू मेक रिसर्च ऑन इट,
रिसर्च करना चाहते
वगैरह वगैरह। तो अभी उनका क्या कहना है, अरे मूल में भूल है भाई तेरे। नहीं पर वो भी कहते हैं हमारे आगम में ऐसा लिखा नहीं है किधर, और आप कहते तो आपके कौन से आगम में लिखा है, यू गिव मी सम रेफरेंसेस। मैंने कहा समय सार जाके पढ़ लो, समय सार में है क्रम नियमित परिणमन बताया। अब वो क्रम नियमित और क्रमबद्ध पर्याय है वो क्या जाने, भाभी इनको तो पुस्तक बताएंगे तो कौन से पेने क्या बोलते पेज पर, फिर पेज भी बताए दे तो केटलामो लिटी, लिटी बताए तो केटलामो अक्षर शब्द पची अक्षर, ऐसा पूछने वाले भी कम नहीं मिलेंगे। ख्याल में आए ना, और इनको रिसर्च करना है। अरे पहले में पहले ये तो नक्की कर, काय कर्या वगर पुरुषार्थ वगर रहे जीव, ऐसा हमारा साधु लोग कहते हैं। ऐसा बोली ना, तू थी अच्छा हो गया। हाँ, ऐसा नहीं समझना मैं ही फेंक रहा हूं, ये भी थी वहां। अब देखो पुरुषार्थ पहले क्या है ये तो मालूम है तुझे, और पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है ये तो पता है, और समझ तेरे वीर्य गुण की पर्याय है, तो तेरा वीर्य गुण तेरे स्वचतुष्टय में रहेगा या परचतुष्टय में जाएगा फाफा मारने, गुजराती शब्द है, ख्याल में है डॉक्टर साहब?
पुरुषार्थ किसे कहते यही पता
यही मालूम नहीं है। वो साधु भी ऐसे, उनके बेसाधु मतलब बेसावध है वो भी वैसे, अब क्या करें। तो मैंने जरा एक 5 मिनट टाइम आप जो बोले, मैं तो उधर जाऊंगी, मैं क्या बोलना भाई। आप क्रमबद्ध पर्याय स्वामी डॉक्टर हुकमचंद की वो तो मैंने पढ़ ली, अच्छा मेरी क्रमबद्ध कारण कार्य रहस्य पुस्तक पढ़ लो वो भी मैंने पढ़ ली। अरे पढ़ ली तो फिर ये काहे को तेरे को अभी भ्रम चालू रह गया। अरे पढ़ लिया नहीं, यहां से यहां पढ़ लिया बस फटाक, वो जो कह रहे हैं वो तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं है। यहां क्या लिखा देखो, वही बात यहां पर है, ये अपनी बात चल रही ना। दृष्टि नो जोर छे, अबे ऊपर से तीसरे, जारे अज्ञानी पंच महाव्रत पाड़े तो पण तेने मिथ्यात्व नो जोर होती। शू मिथ्यात्व नो जोर छे के आ महाव्रत परिणाम हूँ करूँ अने तेथी मने लाभ छे, यानी शुभ भाव करने से मुझे लाभ होगा, एवी मिथ्या मान्यता नु जोर होवा थी अनंतो संसार फड़तो जाय छे। ज्ञानी ने आत्मा ने रुचि नु जोर छे अने अज्ञानी ने राग नी रुचि नु जोर छे, बेमा फरक छे ने। तो के ज्ञानी ने केवल निर्जरा थाय छे अने अज्ञानी ने केवल बंद थाय छे। अभी ये अभी मूल बात तो यहां है जो अभी एप्लीकेबल हो सकेंगे। एक तो जीव बाहर ने डफास माती बाहर नवरो न पड़े, यानी समझ में आया इंदु बहन है, उसमें आपके हिंदी में नहीं होगा ये, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। क्या है क्या ये किधर उसको मिल ही नहीं रहे। हाँ ये निर्जरा ने अज्ञानी ने केवल बंद था ये है ना, उसके बाद में क्या लिखा है। हाँ देखो देखो ये बीच में तोड़ दिया उन्होंने, देखो देखो देखो। एक तो जीव बाहर ने डफांस माती, यानी मैं डॉक्टर हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ ऐसा मानने, वो भी डॉक्टर थे डॉक्टर। हाँ अभी अभी इनसे बात हुई, हमारे सरला बहन से, वो एक सीनियर है एक साल, ऐसा उसने बताया और मैंने चोरी से सुन लिया। तो मेरे को रिसर्च करना है बोलती है, अरे क्या करे भगवान अभी। चलो ठीक, हाँ मुझे खुद की सेखी मार रहा है, वो सेखी मारने में से बाहर नहीं आ रहा है, वो तो ने डफास माती है। अभी आपको कोई बोले, हाँ हाँ आपको कोई बोले क्यों सेठ कैसा है, तो सेठ एकदम, हाँ वो डफास। हाँ डम्फास ये होते तो, हाँ डम्फास बराबर डो के ऊपर अनुसार है, यानी आपने इसमें मशगूल हो और उसमें आपको बड़ा मानना, ये बहुतों का ऐसे होता है। वो भाई कह रहे ये यहाँ पहले एक डॉक्टर आता था, यहाँ साइन में प्रैक्टिस करता है, बोलते हैं मैं डॉक्टर और मेरे को प्रश्न पूछता है। अरे भगवान यहाँ तो जो डॉक्टर हो या पेशेंट हम किसको भी प्रश्न पूछते हैं। आना बंद हो गया डॉक्टर साहब, मैं नाम तक बता दूंगा, वो यही है, इसको भी मालूम है। इसके बड़ी बहन के जेठ का जवाई है वो, हाँ डिलीट कर दिया वो तो। देखो इसमें कितना माल भरा हुआ है। देखो देखो क्या कहते हैं, एक तो जीव बाहर ने डफास माती नवरो न पड़े, अने एमाय वड़ी जो संयोगो अनुकूल हो तो जोई लियो पछी जाने के हूँ पोड़ो ने शेरी साकड़ी, ये तो समझ में आया ना। पन बापू ये तो बधा संजोगो क्या तारा छे, तू मारा मारा करे छे पन ए बधा मारा एटले तने मारनारा ज छे भाई। हाँ वही तो कह रहे हैं ना यहाँ, ते मारा मारा एटले शू ते आ मारा छे आ मारा छे ऐसा कहते ना, के ए बधा मारा एटले तने मारनारा छे भाई, तारी असंयोगी चीज ने ते जानी नथी, तेरा स्वभाव असंयोगी है। हाँ तो कह रहे हैं कि तारा असंयोगी चीज ने ते जानी नथी, तू चैतन्य स्वरूपी निर्मलानंद नो नाथ छोने प्रभु, एमा अहमपनु एमा स्वामीपनु धारण कर, तेथी तने समकित थशे, जो समकिती ज्ञानी पुरुष परमाने राग मां स्वामित्व धारतो नथी, तेथी राग आवे छे छता कर्मती छूटी जाय छे, तेने केवल निर्जराज थाय छे। ये कितना सुंदर है ये पूरा पैराग्राफ, ये हम अपने पे लगाए कि मैं ऐसा था मैं ऐसा था मैं ऐसा था, मैं कौन हूं तो फला फला खाएगा मैं वही ये हूं कौन, दसवीं पीढ़ी पहले वो शिवाजी महाराज मेरा फला फला था, अरे आज तू कौन है ख्याल में। ये ऐसी सारी बातें हैं, अरे लौकिक में भी तो हम किसी के घर में हमनी हमारी बेटी दिए देने जाते हैं, ये असली बनी हुई बात है। डॉक्टर एक भाई साहब आए हमारे पास कि वो फला फला आपके पहचान के हैं, तो क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि मेरा बड़ा लड़का बैरिस्टर है, दूसरा लड़का डॉक्टर है, तीसरा लड़का इंजीनियर है, हमारी इतनी खेती बाड़ी है, हमारा ये है इतना वो है वो है वो है बहुत कुछ ऐसा बहुत है। मैंने कहा वो सब ठीक है लेकिन वो लड़के को आपने देखा हा? लड़का क्या करता है, वो तो मैंने पूछा ही नहीं साहब। अब वो लड़का मान लो मतिमंद होगा, मान लो मतिमंद यानी समझती है नहीं तो हम देंगे कि नहीं, अरे उसका बड़ा भाई डॉक्टर है, उसका बड़ा भाई इंजीनियर है, उसका बड़ा भाई बैरिस्टर है, अब वो कौन है हा? तो ये ऐसी बात हो गई कि अभी तू कौन है ये नहीं जान रहे, और मेरा फला वो है मेरा फला वो है, यही तो कह रहे हैं कि समकित पुरुष परमाने रागमा स्वामित्व धारतो नथी, ख्याल में आया, तेथी राग आवे छे छता कर्मती छूटी जाय छे, तेने केवल निर्जराज थाय छे, माटे सम्यक दृष्टि विरागीना भोगोपभोगने निर्जरानुज निमित्त केवामा आयमू छे, पूर्व कर्म उदयमा आवीने तेनु द्रव्य खरी गयूं ते द्रव्य निर्जरा छे। ये आई थी ना बात कल, समकितीनो भोगोपभोग निर्जरानु निमित्त ज कयो छे हो, कारण के जे द्रव्य निर्जरा थाय छे ते तो तेना कारणे कर्मना परमाणुओना कारणे ज थाय छे, ज्ञानी राग भाव ने पोतानो मानतो नथी, माटे तेनो विराग भाव निर्जरानु निमित्त थाय छे, अने पूर्वनु जे कर्म उदयमां आव्युं ते खरी गयुं ते द्रव्य निर्जरा छे, अथ भाव निर्जरा स्वरूपम आवेदयति। बोलो साहब।
हवे भाव निर्जरानो स्वरूप कहे छे, पहले गाथा पढ़ेंगे अभी हम,
पहले तो इसमें ऐसा टाइटल था ना, द्रव्य निर्जरा कैसे होती है ये बात थी ना, देखो क्या कहते हैं
ज्ञानी की द्रव्य निर्जरा।
हाँ 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 ये पहले हवे द्रव्य निर्जरानो स्वरूप कहे छे, हवे यहाँ लिखते हैं भाव निर्जरानु स्वरूप कहे छे। अभी हम गाथा पढ़ेंगे 194।
दौवे उव भुंजन्ते
नियमा जायदि सुहं व दुःखं वा तं सुह दुःखमुदिन्नं वेददि अधनिज्जरं जादि द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं वा दुःखं वा तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति वस्तुतने उपभोगनिश्चय सुखवा दुःखतायते हे उदित सुख दुख भोगवे पछि निर्जराथ जायचे वस्तु तणे उपभोग निश्चय सुखवा दुख थायचे हे उदित सुख दुख भोगवे पछि निर्जरा थई जायचे।
देखो पहले में द्रव्य निर्जरा में क्या कहा था, ज्ञानी जो भोग भोगता है तो पुराने कर्मों का उदय होता है और उसके राग का स्वामित्व नहीं है तो क्या होता है, वो खिर जाता है, तो उसको द्रव्य निर्जरा कहते। अब यहाँ क्या बात कह रहे हैं, देखो हम वो गाथार्थ पहले पढ़ेंगे फिर टीका में भी अधिक बात करेंगे। द्रव्य उपभुज्य माने वस्तु भोगवामा आवता, अभी वो राग के साथ ही भोग रहा है ना, राग है परंतु राग का स्वामित्व नहीं है, पहले ये बात आई थी। तो अभी जब वस्तु का भोग कर रहा है, लड्डू खा रहा है मान लेते हैं, तो क्या हो रहा है उसको, सुखम वा दुखम वा सुख अथवा दुख नियमात नियम थी जायते ने उत्पन्न थाय छे। अभी हम मान लेते कि लड्डू खाने से उसको सुख उत्पन्न हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है, तो क्या कहते उदीर्णम उदीर्ण थेला अर्थात उत्पन्न थेला तत् सुख दुखम ते सुख दुख ने वेदयते यने वेदे छे अनुभवे छे अथ यने पची निर्जराम याति ते सुख दुख रूप भाव निर्जरी जाए छे। पहले क्या देखा था हमने, वो कर्म की निर्जरा होती, द्रव्य की निर्जरा, अब यहाँ भाव की निर्जरा बता रहे। वहां परवस्तु को भोग रहा था परंतु भोगना भोगने के राग में अपनत्व ना अपनी बुद्धि नहीं थी, अपनत्व बुद्धि नहीं थी, तो वो पुराना कर्म उसका फल देके खिर रहा था। अब यहाँ जीव क्या कर रहा है, किसी वस्तु को भोगते समय या कोई अभी कठिन प्रसंग है, जैसे हम रामचंद्र की बात करते थे, वो सीता के उदय में वियोग में वो दुखी हो रहे थे तो दुख भोग रहे थे ना, वहां तो वो दुख भोग रहे थे परंतु उसमें उसकी एकत्व बुद्धि नहीं थी तो दुख भोग कर वो निकल गया। जैसे वहां द्रव्य कर्म उदय में आकर खिर गया वैसे यहाँ भाव निर्जरा की बात करें। अब ये और स्पष्ट होगा टीका में देखेंगे। नहीं, एकत्व बुद्धि वगैरह पन दुखता है, जैसे अभी रामचंद्र जी की उदाहरण उसका ले ले, या कोई सम्य दृष्टि है, उसको एकत्व बुद्धि वाला मिथ्यात्व नहीं है फिर भी राग है कि नहीं है, उसको ना राग में एकत्व बुद्धि है ना पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि है, फिर भी संयोगों में उसको कुछ ना कुछ इष्ट अनिष्ट, अभी उसके तीन कषाय बाकी है, अनंतानुबंधी चला गया, मिथ्यात्व चला गया है, यानी एकत्व बुद्धि वाला नहीं है। एकत्व बुद्धि किसमें होती है, वो मिथ्यात्व वाले परिणाम में, परंतु अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन राग है वहां पर, तो उतने उसको राग द्वेष के परिणाम हो रहे कि नहीं। अभी कोई सम्यक दृष्टि है और कोई धर्म पर संकट आता है, कोई राजा होगा तो लड़ने जाएगा कि नहीं, कि ये आक्रमण हो रहा है तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है, या हमारे मुनियों पर इतना उपसर्ग करते हैं तो इनका प्रतिकार करना अन्य लोगों का आवश्यक है, तो उसको वहां उतना राग भी है तो उसमें सुख दुख का भी अनुभव होगा। लक्ष्मण मर गया तो 6 महीने उसने शोक किया था, उसका शव कंधे पर उठा के ले जाता था, उसको नहलाना खाना खिलाना ऐसी चीजें करता था, तो ये दुख हो रहा था कि नहीं हो रहा था उसको, तो ये सुख दुख भोगने की बात है यहाँ पर।
लौकिक सुख,
यानी जितने अंश में राग है उतने अंश में उसको सुख दुख भी है। अब उसी को भाव निर्जरा क्यों कहते हैं, उसकी बात तो अभी टीका में खोल कर बताएंगे।
देखो, हमने जो गुणस्थान प्रवेशिका सीखी थी उसमें गुणस्थान की अपेक्षा से कौन से जीव सुखी है और कौन से जीव दुखी है ये देखा था। तो वहां याद है आपको, देखो पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक के जीव नियम से दुखी ही है, और 11वें 12वें 13वें 14वें में नियम से सुखी है, और बीच वाले जो है 14 से लेकर 10वें तक के वो सुखी आंशिक दुखी है। ये याद है आपको, हमने सीखा था। तो ऐसे चौथे वाला भी है, छठे वाला भी है, जो भी है, यहाँ तो 10वें तक की बात ली है। क्यों, क्या दुख है उनको? जितने प्रमाण में कषाय विद्यमान है वो भले राग पूर्वक बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक, लेकिन है तो विद्यमान। अगर हम 10वें गुणस्थान वर्ती या 7वें गुणस्थान वर्ती जीव जिसको अभी शुद्धोपयोग ही चल रहा है, लेकिन वहां संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है ना, तो वो है तो उनका उदय होगा कि नहीं, ख्याल में है ना? तो उतने प्रमाण में उनको दुखी कहा है। ये सूक्ष्म बातें करणा नियोग आपको सिखाएगा। द्रव्य नियोग कहेगा, अरे ये तो चौथा गुणस्थान है, इन्हें मिथ्यात्व कर्म ने नष्ट करी ना क्या? अरे नष्ट नहीं करा, इनो अनुदय छे, का तो उपशम सम्यक तो होगा, का तो क्षोपम होगा, या तो क्षायिक होगा। लेकिन पहला जो सम्यक तो करेगा तो उपशम ही करेगा ना। तो ये डिटेल बातें करना नहीं के माध्यम से हमारे ख्याल में। लेकिन अपने यहाँ क्या बोलते हैं, द्रव्यानुयोग में सम्यक दृष्टि ने बंधज थतो नहीं, मिले नहीं तो दृष्टि ना जोरना कारण एम कहवाई छे, ख्याल में? इसलिए हमारा ऐसा मानस हो जाता है कि उसको कोई बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बंद होगा। तो गौ ने उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो कोई लंबा काल वाला यानी संसार में रुला रहे ऐसा बंद नहीं होगा, वो होगा तो कुछ टाइम के लिए कमा दे। देखते ना, जो चौथा सम्यक्तो प्राप्त करने वाला चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है, वो अभी पहले सम्यक्तो प्राप्त करने के पहले प्रायोग्य लब्धि में आता है, अभी मिथ्या दृष्टि है, उसके भी अंत कोड़ा कोड़ी कर्म की मतलब स्थिति रह जाती है। सब इतने सब जो कोई कुछ कुछ सागर तक के जिनके कर्म बंद था वो हटकर एकदम अंतक कोड़ा कोड़ी होता है। अभी कहाँ है? मिथ्यात्व में है। अभी तो करण लब्धि भी नहीं मान ली है, ऐसा होता है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि नहीं उसको सम्यक दृष्टिपन दुखी हो, हाँ हो, नहीं तो इन्हें तो पछे आनंद सुख जो कहो कि पूर्ण सुखी कहू पड़े अपन ने। हाँ जी, आगे
देखो, जैसे पहली गाथा में क्या बताया कि सम्यक दृष्टि कोई ज्ञानी भोग कर रहा है तो उसके काल में भी उसकी निर्जरा चल रही है, वो तो बात ख्याल में आई ना। अब भोग कर रहा है तो ये भोगों में उसको सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि पूर्ण वितराग हुआ है? अभी पूर्ण वितराग हुआ तो भोग ही नहीं भोगेगा। तो जैसे वहां भोग रहा है और निर्जरा है, वैसे वो सुख दुख का अनुभव भी कर रहा है और फिर भी उसकी निर्जरा है, ये यहां बता रहे। सुख दुख का अनुभव क्यों? क्योंकि अभी वो मिथ्यात्व वाला तो उसको मोहनीय नहीं है, परंतु चारित्र मोहनीय है और यहाँ साता असाता का उदय भी है। तो उसके उदय में तीन कषाय के जो चोकड़ी उनके बाकी है, उसके कारण उसमें जितना राग है उसके कारण सुख दुख भी है। उसके साथ एकत्व बुद्धि नहीं है राग के साथ, ये करने जैसा है उसमें से मेरे को सुख आता है, ये बुद्धि नहीं है। ऐसी बुद्धि के बिना भी वो राग वहां होता है और फिर भी उनके वो राग का स्वामित्व नहीं है, इसलिए उन रागों के कारण, जैसे मिथ्या दृष्टि को उस राग के कारण बंद होता था, वैसे इसको उस राग के कारण बंद नहीं होगा, इतनी बात यहां बताते। यानी हम ऐसा लेते हैं कि कोई मिथ्या दृष्टि है और घर में ऐसा कोई प्रसंग मना के बहुत शोक कर रहा है, उसको भी दुख का वेदन है, और उसको बंद कितना होगा, क्योंकि उसको मिथ्यात्व सहित वाले वो सारे चारों कषाय चोकड़ी है। अब कोई समय दृष्टि है, अब उसके घर में ऐसी कोई घटना घटी तो उसको शोक होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
उसको शोक होगा, लेकिन उस शोक में उसको एकत्व बुद्धि नहीं है, जिसको हम कहेंगे एक प्रकार का द्वेष परिणाम है। तो द्वेष परिणाम के बदल राग होगा कि नहीं, उसको द्वेष परिणाम के बदल राग होगा कि नहीं, आप कहेंगे नहीं होगा, सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, तो द्वेष का द्वेष तो भी होगा कि नहीं, राग का राग भी नहीं होगा और द्वेष का राग भी नहीं होगा और द्वेष का द्वेष भी नहीं होगा, क्योंकि उस रूप में नहीं हूं, ये तो उसके खातरी है, जभी तो उसको सम्यक तो हुआ है। हाँ, आप कंटिन्यू करें।
देखो अभी हम पढ़ते हैं, पहले तो यहाँ उसके वो राग का एक तो बुद्धि नहीं है, और सुख दुख का अनुभव होते हुए भी उसकी निर्जरा चल रही है, ये बात यहाँ बताएंगे। ठीक है, परद्रव्य भोगवामा आवता, क्योंकि परद्रव्य के भोगने के बाद पहली गाथा से आई थी ना, वहां तो परद्रव्य को भोगते हुए उसके निर्जरा हो रही है सिद्ध कर चुके हैं। तब कहते हैं परद्रव्य भोगवामा आवता तेना निमित्ते सुखरूप अथवा दुखरूप जीवनो भाव नियम थी ज उदय थाय छे, अर्थात उत्पन्न थाय छे, कारण के वेदन शाता अने अशाता ए
कहाँ पढ़ रहे हैं आप?
टीका।
ओ, मैं समझो गाथा पढ़ रहे हैं।
गाथा हुई ना। परद्रव्य ने भोगवामा आवता तेना निमित्ते सुखरूप अथवा दुखरूप जीवनो भाव नियमती ज उदय थाय छे, यानी जब जब ये परद्रव्य को भोग रहा है तब या तो सुख या दुख होगा। क्यों? कारण के वेदन यानी उसका सुख या दुख रूप जो वेदन है वो
अनुभव,
शाता अने अशाता ए बे प्रकारों ने अतिक्रमतु नथी, यानी शाता के उदय में सुखरूप अनुभव है और अशाता के उदय में दुख रूप, क्योंकि अभी वहां मोह यानी राग अभी बाकी है ना उसके, अर्थात वेदन बे प्रकार नु छे, शाता रूप अने अशाता रूप। जारे ते एटले सुखरूप अथवा दुखरूप भाव वेदाय छे त्यारे, अब ये सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि को भी, तो मिथ्या दृष्टि की पहले बात की उन्होंने, मिथ्या दृष्टि ने रागादि भावों ना सद्भाव थी, रागादि भाव का सद्भाव ने, अरे सुखरूप दुखरूप हो रहा है तो उस वहां राग है ना, परंतु ये मिथ्या दृष्टि को जब रागादि भाव कहते हैं तो मिथ्यात्व अज्ञान वगैरह वो उसके साथ वाला लेना, पहले हमने देखी की बात ये, तो रागादि भावना सद्भाव थी बंधनु निमित्त थई ने ते भाव निर्जरता छता, यानी कौन सा भाव, अभी उसके जो उसमें राग हो रहा है सुख दुख का वेदन चल रहा है, तो अभी वो भाव होने पर खरेखर नहीं निर्जर थको, जैसे वहां द्रव्य निर्जरा की थी ना, ऐसे ये इसके भाव होने पर नया बंध होता है, इसलिए कहते खरेखर वो निर्जरा ही नहीं हुई, तो कहते खरेखर नहीं निर्जरो थको बंधज थाय छे, यानी वो भाव तो निकल गए परंतु उस भाव के सद्भाव ने नया बंध हो रहा है, इसलिए उसको कहे वो खरेखर निर्जरा उसकी हुई नहीं है, उन भावों के कारण नया बंध ही हो गया है। परंतु सम्यक दृष्टि ने रागादि भावों ना अभाव थी बंधनु निमित्त थया बिना केवल निर्जर तो हुआ थी, ये किसकी वो भावों की बात चल रही ना, ये भाव तो हो रहे परंतु उन भावों का स्वामित्व नहीं होने के कारण बस वो होके निकल जाएंगे, उसके कारण नया और बंद नहीं होगा, खरेखर निर्जर्य थको निर्जराज थाई छे। पहले में पहले द्रव्य निर्जरा की बात बताई थी, अब यहाँ पर भाव निर्जरा की बात करते हैं, कि ये जो परद्रव्य पहले बोला था कि परद्रव्यों का भोग करता है ज्ञानी, तो उस काल में उसके रागादि नहीं होने के कारण वो भोग भी निर्जरा के हेतु है, खरेखर भोग निर्जरा के हेतु नहीं है, परंतु भोग के काल में उसका जो विरागता है, विराग यानी रागों से उसका एकत्व बुद्धि उसके नहीं है, स्वामित्व नहीं है, तो उसके कारण उसकी निर्जरा चल रही है। अब यहाँ भावों की बात कर रहे कि परद्रव्यों को भोगते हुए उसको सुख या दुख का वेदन चल रहा है। अज्ञान अवस्था में ये सुख दुख का वेदन चल रहा है, अपने को सुखी दुखी मानता भी है, मानता है ना, अपने को सुखी दुखी अनुभवता भी है, मानता भी है, और उसके कारण ये नया बंध भी होता है। अब ये ज्ञानी उसके सुख दुख के परिणाम है, वहां कुछ भोगने के भाव भी है, परंतु उसके उसका स्वामित्व नहीं है, इसलिए उसके कारण उसको नया बंध नहीं होता, तो ये भाव होके छूट जाते हैं, ऐसा कहते हैं। यानी फिर उसकी परंपरा आगे नहीं चलती, ये बात बताना चाहते। भावार्थ में इसको और सरल करके बताएंगे। देखो, परद्रव्य भोगवता कर्मना उदयना निमित्ते जीव ने सुखरूप अथवा दुखरूप भाव नियम थी उत्पन्न थाय छे। ये अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले, यानी यहाँ वेदनीय कर्म की मुख्यता से बात की है। मिथ्या दृष्टि ने रागादिक ने लीधे ते भाव आगामी बंध करीने निर्जरे छे। भाव तो हुए तो भाव तो निकल ही जाने वाले हैं, परंतु वो कैसे है, खाली जाते नहीं है, नया बंध करके चले जाते हैं। तेथी तेने निर्जर्यो कही शकातो नथी। माटे मिथ्या दृष्टि ने परद्रव्य भोगवता बंध ज थाय छे, और सम्यक दृष्टि ने रागादिक नहीं होवाथी आगामी बंध कर्या विना ज ते भाव निर्जरी जाय छे। पहले द्रव्य निर्जरी जाय छे कहा था, अब यहां भाव निर्जरी जाय छे, तेथी तेने निर्जर्यो कही शकाय छे। माटे सम्य दृष्टि ने परद्रव्य भोगवता निर्जराज थाय छे। आ रीते सम्य दृष्टि ने भाव निर्जरा थाय छे। पहली गाथा में द्रव्य निर्जरा की बात की, अब यहाँ भाव निर्जरा की, अने परद्रव्य को भोगते हुए ज्ञानी के द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा दोनों चल रही है, ये बात यहाँ ये दो गाथाओं के द्वारा सिद्ध की। प्रवचन पढ़ेंगे हम।
अभी 20 पृष्ठ पर ही समय सर गाथा 194 मथाड़ू लख्यू छे। हवे भाव निर्जरानु स्वरूप कहे छे। जुओ, निर्जरा त्रण प्रकारे छे। अभी बात आई थी ना, देखो यहीं से वहां और वहां से यहां, क्या क्या कह रहे। कर्मनु खरी जमू, यानी कर्म यानी जो द्रव्य कर्म है, आठ कर्म है, एनु खरी जमू। ये आठ कर्मों में से आठों ही कर्म खिरते होंगे या सात कर्म खिरते होंगे? हाँ मम्मी, सात ने। अने बंद केटला कर्म नो थतो हशे? निरंतर बंद है, सात नो निरंतर बंद थाय। अने निर्जरा एटले खरी जवू जे थाय छे ते सात नो के आठ नो? अरे 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 सात नु थाय तो सारू ने, आयु तो त्या ने त्या रहे तो हारू ने। आयु नो पन निरंतर उदय आवे आने खरी जाए। हो घना दिवस थे गया ने, जरा आपने पॉलिश करिए ने। बंध निरंतर सात कर्मों का होता है, आयु कर्म कभी कभी बनता है, और उदय तो आठों ही कर्मों का होगा, और आयु कर्म का उदय नहीं होगा तो अपन यहाँ कहाँ रहेंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। देखो, कर्मनु खरी जमुं ते जड़ कर्म, जड़नी निर्जरा एटले द्रव्य निर्जरा छे। अशुद्धतानु टळवुं ते पोतानी भाव निर्जरा नास्तिति छे, है ने? ये बात लिखे थे ना हमने। अने शुद्धतानी वृद्धि थवी ते भाव निर्जरा अस्तिति छे। तेमा द्रव्य निर्जरानी वाद गाथा 193 मां आवी गई। आई जे अशुद्धतानु टळवुं ते भाव निर्जरानी वात आ गाथा मां हवे कहे छे। टीका उपरनु प्रवचन। परद्रव्य भोगवामां आवता तेना निमित्ते सुखरूप अथवा दुखरूप जीवनो भाव नियमथी ज उदय थाय छे। क्यों? ये अभी हमने देखा था ना, जब जब यह जीव का लक्ष्य परद्रव्य पर जाता है तो उसको राग द्वेष हुए बिना रहते नहीं, हमने देखा था ना। तो कहते तेना निमित्ते सुखरूप अथवा दुखरूप जीवनो भाव नियम थी ज उदय थाय छे, अर्थात उत्पन्न थाय छे, कारण के वेदन शाता ने अशाता ए वे प्रकारों ने अतिक्रमतु नथी। यानी जब इस जीव का उपयोग परत पदार्थों पे लगा हुआ है तब उसको साता या असाता इस दोनों प्रकार का उसको वेदन होगा, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होगा। इसलिए कहते ए बे प्रकारों ने अतिक्रमतु नथी, यानी उसके बियॉन्ड जाकर और कोई तीसरे किसी का वेदन करे, क्योंकि यहाँ किधर लक्ष्य है, स्व के तरफ है क्या पर के तरफ, पर के तरफ है, इसलिए उसको वेदन साता का या असाता ही होगा। अब कह रहे हैं वहां जब हो रहा है तब इससे अलावा अन्य कुछ नहीं होगा, इसलिए देखो क्या कहते हैं, वेदन शाता अने अशाता ए बे प्रकारों ने अतिक्रमतु नरती, अर्थात वेदन बे प्रकार नूज छे, का तो सातारूप अने का तो असातारूप। आहा गाथा में बहुज भरियू छे, कहे छे परद्रव्य भोगवामां आवता, जुओ परद्रव्य कहीं भोगवी शकाय छे एम नथी, पण आ तो निमित्तनु कथन छे। यानी ये क्या कहना चाहते कि यहाँ भले लिखा है कि परद्रव्य भोगवामां आवता, यहाँ तो कह रहे हैं कि परद्रव्य को यह जीव भोग ही नहीं सकता है, तो यहाँ तो लिखा है, लेकिन वो भोगने के जो परिणाम है उसके कारण उसको साता या असाता के साथ सुख दुख का वेदन होगा, पर आ तो निमित्तनु कथन छे। आ शरीर दाल भात शाक के स्त्रीनु शरीर जे जड़ रूपी छे तेने आत्मा भोगवी शकतो नथी, केम के आत्मा चैतन्य स्वरूप अरूपी छे। अरे जड़ ने तो आत्मा अड़तो ही नथी, पची भोगवे क्या थी। अभी डॉक्टर साहब वर्षी तब की बात निकली थी ना, इसमें उसका उत्तर आ गया पूरा। केम के क्या है, खाना क्या है, रूपी पदार्थ है हा? और वो जड़ है, तो यहाँ तो कहते कि आत्मा चैतन्य स्वरूप अरूपी छे, अने जड़ ने तो आत्मा अड़तो ही नथी, पची भोगवे क्या थी। गाथा त्रण नी टीका मां कहूं छे ने के द्रव्य पोताना अनंत धर्मोना चक्र ने चुंबे छे, एटले इने स्पर्शे छे, चुंबे छे नो अर्थ, पण परद्रव्य ने चुंबतु एटले स्पर्शतु नथी। भाई आवुं ज द्रव्य नु स्वरूप छे, दरेक द्रव्य पोताना गुणपर्याय ने स्पर्शे छे, पण परद्रव्यना द्रव्य गुणपर्याय ने स्पर्शतु ज नथी। भोग काळे जीव स्त्रीना शरीर ने अड्यो ज नथी, અને સ્ત્રીનું શરીર જીવને અડ્યું જ નથી, કેમ કે શરીર તો જડ પરદ્રવ્ય છે, પરદ્રવ્યને આત્મા અડેશી રીતે કે તેને ભોગવે। કિતના ખુલાસા કર દિયા દેખા। પ્રશ્ન, આ તો એટલે જીવ શરીરને ભોગવે છે, મોસંબીનો રસ પીવે છે, મૈસૂબ ખાય છે, इत्यादि भोगो तो प्रत्यक्ष देखाय छे ने। प्रश्नकर्ता ने पूछा, धूळे भोगो तो नथी सांभळने, मौसमी मैसूब आदि तो जड़ रूपी छे, स्पर्श रस गंध वर्णवाळी चीज छे, तथा स्त्रीनु शरीर छे ते पण स्पर्श रस गंध वाळी जड़ रूपी चीज छे, त्यारे तू अरूपी भगवान चैतन्य स्वरूप एनाथी ए सर्वथी भिन्न छो, तू कदी ए कोई ने अड़ियो नथी अने अड़ी शकतो नथी, पण संयोग देखीने अज्ञानी जीव एम माने छे के मैं खादू, मैं पीधू, मैं भोग लीधो। खरेखर तो ते पदार्थों में ठीकपनानो जे राग थयो ते राग ने अज्ञानी भोगवे छे। कितनी क्लैरिटी दी है, परद्रव्य ने भोगवे छे एम केवुं ए तो निमित्तनु कथन छे। आ कई जातनो उपदेश, दया पाळो, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, एवो उपदेश होय तो कांईक समझाय, पण आवा उपदेश मां हवे समजवुं शुं। ये आम तौर से ऐसी लोगों की भावना है। भाई दया पाळवी, व्रत करवा, तप करवू अने उपवास करवा इत्यादि तो बधी રાગની ક્રિયા છે, એમાં આત્મા ક્યાં આવ્યો? એ રાગની અજ્ઞાનમય ક્રિયાઓમાં શું સમજવું છે? તો અમને પહેલે દેખાય ને ઉપયોગ છે, ઉપયોગમાં ઉપયોગ રાગમાં નથી, ને રાગ ક્રોધાદી છે, ક્રોધાદીમાં એ ઉપયોગમાં નથી. એ તો વાત કહે રે, ક્યાં કહા? એ રાગની અજ્ઞાનમય ક્રિયાઓમાં શું સમજવું છે? નિશ્ચયથી તો ચૈતન્ય સ્વરૂપી પરમાત્મ દ્રવ્ય પ્રભુ આત્મા રાગને અડતોય નથી, કેમ કે રાગ છે એ તો દુઃખ છે. જ્ઞાન સ્વભાવી અનાકુળ આનંદનું ઢીમ પ્રભુ આત્મા દુઃખ એવા રાગને કેમ અડે? ચાહે અશુભ રાગ હો કે શુભ રાગ, બંને દુઃખ છે. માટે દુઃખધામ માટે સુખધામ આનંદ સ્વરૂપી આત્મા તે દુઃખને કેમ અડે? આવું ભેદ જ્ઞાન કરવું તે યથાર્થ સમજવું છે. સમજાણું કાંઈ અહીં આચાર્ય દેવ એમ કહે છે કે પરદ્રવ્યને ભોગવવામાં આવતા તેના નિમિત્તે સુખરૂપ અથવા દુઃખરૂપ જીવનો ભાવ નિયમથી ઉદય થાય છે. એટલે શું કહે છે કે આ શરીર, મન, વાણી, ધન, ભોજન, સ્ત્રી ઇત્યાદિ ઉપર લક્ષ જતા તે વસ્તુને જીવ ભોગવે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે, અને તેના નિમિત્તે જીવને સુખ કે દુઃખની કલ્પના થાય છે. થયા વિના રીતિ નથી. જ્ઞાનીને પણ સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ ભાવ થાય છે. ક્યાં લીખા મમ્મી? હા, ક્યાં લીખા? જ્ઞાનીને પણ સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ ભાવ થાય છે, યાની જીતને પ્રમાણ મેં ઉસકો શુદ્ધ પરિણતિ ચલ રહી હૈ ઉતના તો સુખ હૈ, ઓર જીતને પ્રમાણ મેં ઉસકે અભી કશાય કી મૌજૂદગી હૈ, કશાય વિદ્યમાન હૈ, ઉતના ઉસકો દુઃખ ભી હો રહા હૈ. પણ જબ હમ દ્રવ્યાનયોગ કી અપેક્ષા સે દૃષ્ટિ કે જોર સે બાત કરતે હૈ, ઉસકો મુખ્ય કરકે બાત કરતે હૈ, તબ વહ જીવ દુઃખ કો ભોગતા હી નહીં હૈ, કર્મ બંધન કરતા હી નહીં હૈ. એસા સ્વભાવ કો મુખ્યતા કરકે યે બાત બતાઈ જાતી. અર્થાત તે સમયે તેને દુઃખ કે સુખની પર્યાય થઈ જાય છે. જો હા 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 સાહેબ આપકા એસા પ્રશ્ન હૈ કે યહાં જો લિખા હૈ કે તેના નિમિત્તને જીવને સુખ કે દુઃખની કલ્પના જ થાય છે, કલ્પના થાય જ છે, થયા વિના રહેતી નથી, ઓર હમ તો સમજતે કે વો સુખ યા દુઃખ કા વેદન કર રહા હૈ, તો યહાં તો આપ કહે રહે હૈ જીવ સુખ કા યા દુઃખ કા વેદન કર રહા હૈ, ઓર યહાં તો લિખા હૈ વો કલ્પના કરે છે, તો યે કૈસા યે કહેના કહેને ક્યા ચાહતે હૈ? તો પહેલે મેં પહેલે મુજે આપ યે બતાઈએ વો જો સુખ કા વેદન કર રહા હૈ વો કિસકા કર રહા હૈ? સુખ કા ક્યા દૂસરા કુછ બતાને આપકો? હા હા, ઓર દુઃખ કા વેદન કરે તબ? હા, તો પર્યાય મેં જો યા સુખ યા દુઃખ જો વેદ રહા હૈ, મારે ઉત્પન્ન હો રહા હૈ, વો કહાં સે, વો કિસ મેં, મતલબ કોણ સે ગુણ કી પર્યાય હૈ વહ? હા, ઓર કિસકા વેદન હો રહા અભી? ચલો હા, યાને એકચ્યુઅલી વો પદાર્થ કો નહીં વેદ રહા હૈ, ઉસકો વહ કલ્પના સે અનુકૂળ માનકર ઓહો આજ યે બહોત બઢિયા બના, એસા હમ ક્યા કહેતે અભી સ્વામીજીને બતાને મેસુ બહુ સારો થઈ ગયો, તો વહ તો વો ખાને વાલા અપને રાગ કો હી વેદતા હૈ, ઉસમે સુખ દુઃખ કી કલ્પના કરતા હૈ. ये बहुत अच्छा बढ़िया बना है खाना, ऐसा हम मान के उसको खाते हैं, तो वो राग को वेद रहे. देखो अभी अभी ये तो छोड़ो ना, अभी बहुत बहुत इजी टू अंडरस्टैंड. ये आजकल वो क्या बर्ड फ्लू कुछ निकला है ना, तो वैसा होते हुए भी इतना कुछ बीमारी पड़ते हुए भी खाने वाले खाते नहीं, खाते ही हैं, और उसका वेदन भी उनको अच्छा लगता है क्योंकि राग का वेदन कर रहे हैं, और जो डरपोक है नहीं चाहते वो नहीं खाएंगे। और हम तो ऐसा करेंगे, अरे बाप रे कैसे खाते होंगे, ऐसा करके हम द्वेष करेंगे, तो हम अपने परिणामों का भोग कर रहे बस।
और एक कंडीशन ऐसी है ना, साता या असाता के उदय में
मोह भी होना चाहिए।
सुख दुख कब होगा? मोह साथ में होगा तो मोह ही है। उसका अर्थ क्या है? वहाँ कुछ उसके कल्पनाएं हो रही है ना, इष्ट अनिष्टता हो रही है ना वहाँ पर। क्या वस्तु में इष्ट अनिष्टता है ही नहीं, तो इष्ट अनिष्टता आई कहाँ से? उसके सोच में से आई है, उसके विचार में से, उसके कल्पना में से आई है, इसलिए वहाँ कल्पना का। और आगे लिखा, ज्ञानी ने पन, पहले तो अज्ञानी की मुख्यता से बात की, फिर कहते ज्ञानी ने पन, यानी उसको भी उसमें सुख दुख की बात हो रही है, उसको उतना सुख दुख का वेदन भी हो रहा है, उसको सुख रूप चल रहा है ना, जितने अंश में उसके, जितने अभी मोह चला गया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया, उतने अंश में उसके तीव्र हर्ष विषाद नहीं हो गए, फिर भी उतनी मात्रा में उसके यथायोग्य वहां पर भी सुख दुख के भाव है। यानी अभी ये सुख और दुख, यहाँ वाला जो सुख दुख है ये उसका विभाव रूप ही है ना, दोनों ही विभाव है। साता के उदय में सुख है वो भी विभाव है, और असाता के उदय में दुख है वो भी विभाव है, ये भी अशुद्ध परिणाम चल रहा है उसका। तो अशुद्ध परिणाम होते हुए भी नया बंध नहीं हो रहा है, इसलिए उसका अशुद्ध परिणाम होके निकल गया, ऐसा कहेंगे हम। कहते अच्छा हुआ, ये खोटा खोटा है वो सब निकल गया, अच्छा है। उसके उदय में नया बंध होगा तो हम कहेंगे ये निर्जरा नहीं है, ये तो और नया नया उसके कारण होता है।
देखो अभी हम कोई खास बात कहते हैं क्या, कि हमको बहुत भूख लगी है, उस समय कोई पर्टिकुलर चीज बनी है, मान लीजिए अभी स्वामी जी बोलते वैसे मैसूर भी बना है, मैसूर बना है, तो जब भी भूख लगती है तो हम खाते हैं और उस समय हमको बहुत अच्छा लगता है, और वही डिश शाम को दोबारा खाने को हमको लगे, और उस समय उतनी उसके प्रति राग की अपनी पहले सुबह में जो थी वो नहीं, उस समय उतना हम नहीं एंजॉय कर रहे हैं, नहीं तारे तो गरम गरम हतू ने, तो हम निमित्त के ऊपर तो बहुत सारू लगे, हमने ठंडू थी क्यों ने, क्या वो बासी हो गया बोलते ना, सुबह तो ताजा ताजा था, अभी थोड़ा, अरे जो तेरे सुबह में जो राग चल रहा था खाने का वो अभी कम हो गया भाई, इसलिए वही चीज तुझे अभी अच्छी नहीं लग रही, यानी उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी सुबह लगी थी। तो ये ही प्रूव करता है कि हम अपने ही राग को वेद रहे हैं, पर चीज को ये कितना मतलब ये वो कितनी चीज ही बताई अपने को। तो ये सारी काल्पनिक बातें ऐसा कहना चाहते हैं, यानी हम पर पदार्थों को छू नहीं सकते ना भाई, आज तक छुए नहीं और आगे भी कभी छू सकेंगे नहीं, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि भाई ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अभी देखिए मैं मेरा ही उदाहरण देता हूं, ये घर में रंग लगाया, जिस दिन लगाया अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, सबको देखो देखो कितना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं तो खाली उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बेटियों ने आग्रह कर करके इसको डीप बनाया, हम तो लाइट बनाना चाहते थे, तो पहले तो देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और फिर अभी साल दो साल हो गए तो अच्छा रे कभी बदली करो ये उसी को, ऐसा होता है वही चीज कभी अच्छी कभी बुरी, तो उस समय के हमारे राग परिणाम द्वेष परिणाम जो है उसके अनुसार वो हम उसको। चलो अब ये आखिरी लाइन है ना, जो 193 गाथा में उपयोग मां ज्ञानी ने द्रव्य कर्म खरी जाए छे, एक सौ त्राणु गाथा में उपभोग मां ज्ञानी ने द्रव्य कर्म खरी जाए छे एनी वात हती, આહી આ ગાથામાં તેને જે અશુદ્ધતા થઈ તે ખરી જાય છે એ વાત છે. ઇસકા અર્થ ક્યા હોગા અગલી ગાથા મેં ઉસકો જો શુદ્ધતા ઉત્પન્ન હોગી ઉસકી વાત આયેગી. અમે તો ઉપવાસ કરીએ છીએ એટલે તપ થાય છે અને તપસા નિર્જરા તપથી નિર્જરા થાય છે એમ માનીએ છીએ. ભાઈ તું જેને ઉપવાસ કહે છે એનાથી તો ધૂળે નિર્જરા નથી. સાંભળને, ઉપવાસ કરવાનો ભાવ તો રાગ છે અને રાગથી તો નિર્જરા નહીં બંધન થાય છે. ઉપવાસ તો સત્યાર્થ અને સચ્ચા ઉપવાસ તો એને કહીએ કે ઉપ નામ યાને ઉપકા અર્થ સમીપ અને વાસ એટલે વસવું. હા હા, આનંદ સ્વરૂપ નિજ આત્મામાં વસવું ઠરવું એને ઉપવાસ કહે છે. બાકી તો બધા અપવાસ, અપ એટલે માઠાવાસ છે. રોટલા પાણી છોડવા એને અજ્ઞાની ઉપવાસ કહે છે, પણ એ તો રાગમાં વસેલો એટલે રાગમાં વાસ અપવાસ છે, માઠો વાસ છે. યહી વાત આપણી હોય હતી ને અભી વર્ષી તો. હા હા, અહીં ભાષા કેવી લીધી છે જે કે પરદ્રવ્ય ભોગવવામાં આવતા, જો કે પરદ્રવ્યને આત્મા ભોગવી શકતો નથી, પણ તેને એવો રાગ સુખ દુઃખની કલ્પના થાય છે અને તે કાળે પરદ્રવ્યમાં જે ચેષ્ટા ક્રિયા થવા યોગ્ય હોય તે થાય છે. યાને અભી મેસુબ યહાં સે અપને મુંહ મેં ગયા વો પરદ્રવ્ય કી ક્રિયા હૈ, તુને કુછ નહીં કિયા ઉસકો. તો કહેતે જૈસે કુછ કાલ હોતા હૈ, રાગ હોતા હૈ, સુખ દુઃખ કી કલ્પના હોતી હૈ, તે કાળે પરદ્રવ્યમાં જે ચેષ્ટા ક્રિયા થવા યોગ્ય હોય તે થાય છે, તેને પરદ્રવ્યને ભોગવે છે એમ વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે. ધર્મી જીવ જેને જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી નિજ ચૈતન્યમય વસ્તુની ઓળખ એટલે પ્રતીતિ થઈ છે તેને કાંઈક રાગ આવે છે, છતાં દ્રષ્ટિની અપેક્ષાએ તેને તે ભોગવતો નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય પરિપૂર્ણ શુદ્ધ ચૈતન્ય પરમાત્મા છે અને એવા આત્મદ્રવ્યનો જેને આશ્રય થયો છે તે જ્ઞાની તો આત્માના આનંદને જ ભોગવે છે. દ્રષ્ટિ નિર્વિકલ્પ છે અને તેનો વિષય પણ ધ્રુવ નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય જ છે. તેથી દ્રષ્ટિની અપેક્ષાએ જ્ઞાની આત્મા રાગને એટલે સુખ દુઃખની કલ્પનાને કરતોય નથી અને ભોગવતોય નથી. એ જ્ઞાની કી વાત કહી. ઓર અજ્ઞાની ક્યા કરેગા, કલ્પના ભી કરેગા ઓર ઉસકો ભોગ. અર્થાત જ્ઞાનીને રાગ દ્વેષ થતા જ નથી, અસ્થિરતાએ થતી નથી. આ દ્રષ્ટિ અપેક્ષાએ વાત છે. બાકી કી વાત અભી મંડે કો. જાવાની કે જ્ઞાન સે સૂઝેલો કાલો, સોવાણી મસ્તકણમો સદા દેત હું.
નમો હરિયંતાણ, નમો સિદ્ધાણ, નમો આયર્યાણ, નમો વચ્છાયાણ, નમો લોયે સંદાહુણ, નમો હરિયંતાણ, નમો સિદ્ધાણ, નમો આયર્યાણ.